पृष्ठ संख्या 39। शुक्ल जी ने इसीलिए अलंकारवाद के स्थान पर भारतीय रसवाद की पुनः प्रतिष्ठा की और उसे लोक संपृक्ति का विस्तृत आयाम देकर आधुनिक और प्रासंगिक बनाया। उन्होंने प्राचीन भारतीय रसवाद से रागात्मकता या अनुभूति प्रवणता तो ली, पर उसे अंतर्मुखी व्यक्तिक साधना न मानकर अनुभूति योग के नाम से लोकमानस और लोक हृदय के साथ रागात्मक संबंध का रूप दिया। जिन परवर्ती रसवादियों का काव्य संसार उत्तर छायावादी काव्य के रोमानवाद से निर्मित हुआ था, उनकी आत्मनिष्ठ विषयी परक रस व्याख्याओं और शुक्ल जी के रसवाद में यही मौलिक अंतर है कि शुक्ल जी ने अपनी रसधारणा का निर्माण सामाजिकता के संदर्भ में किया था। उनका रस मार्ग अंतर्मुख न होकर बहिर्मुखी था। उनकी सारी चिंता व्यापक लोकमानस की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने रस की लोकोत्तरता का विरोध कर उसे लोक भूमि पर उतारा। इसीलिए उन्होंने रूप सौंदर्य के समानांतर कर्म या शील सौंदर्य को महत्व दिया और मुक्तक एवं प्रगीतों की तुलना में उन प्रबंध काव्यों का समर्थन किया जिनमें जीवन के व्यापक स्तर पर इस कर्म सौंदर्य के चित्रण का अवकाश हो। स्थायी भावों में करुणा को सर्वाधिक महत्व देने के मूल में भी उनकी यही मानववादी दृष्टि है। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्थूल नैतिक उपयोगितावाद को भावात्मक मानवतावाद का रूप देकर आलोचना के प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके हाथों हिंदी में पहली बार आलोचना को सृजनात्मक साहित्य के समतुल्य गरिमा मिली। शुक्ल जी के बारे में यह शंका व्यक्त की गई है कि जितने कौशल से वे व्यवहारिक आलोचना करते थे, उतनी सिद्धि उन्हें अपने द्वारा प्रयुक्त प्रतिमानों को सूत्रबद्ध करने में प्राप्त नहीं थी। परंतु शुक्ल जी ने ऐसा प्रयास न किया हो यह नहीं कहा जा सकता। रसमीमांसा की रचना आलोचना के अपने प्रतिमान को सिद्धांतबद्ध करने का ही प्रयत्न है, पर सवाल दूसरा है, क्या सफल आलोचक इस बात के लिए बाध्य है कि वह अपनी आलोचना पद्धति को सैद्धांतिक रूप जरूर दे। शैक्षिक आवश्यकता के अनुरोध से साहित्य में एकेडमिक आलोचना की जो परंपरा विकसित हुई उसके समारंभ का श्रेय बाबू श्याम सुंदर दास ब्रैकेट में 1875 से 1945 ईस्वी ब्रैकेट क्लोज को है। बाबू श्याम सुंदर ने साहित्यालोचन की भूमिका में स्वयं स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना MA के पाठ्यक्रम में उपयुक्त आलोचनात्मक ग्रंथ के अभाव को पूरा करने के लिए की। स्पष्ट है कि ऐसे ग्रंथ का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय की अधिकाधिक जानकारी देना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से उपलब्ध सामग्री को एकत्र कर व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही पर्याप्त था। वस्तुतः बाबू श्याम सुंदर दास ने इस ग्रंथ के बारे में मौलिकता का कोई दावा भी नहीं किया। उन्होंने तो पहले संस्करण की भूमिका में ही स्वीकार कर लिया था कि इस ग्रंथ की रचना करने के लिए उन्होंने अनेक भारतीय और पाश्चात्य ग्रंथों को आधार बनाया था।